चैप्टर शक की दीवारें। कमरा आधा अंधेरा था। खिड़की से आती चांदनी की परतें फर्श पर बिखरी हुई थीं। पूनम बिस्तर पर करवट बदल चुकी थी। उसका चेहरा तकिए में छिपा था। सांसें धीमी और लयबद्ध थीं, जैसे उसने खुद को पूरी तरह नींद के हवाले कर दिया हो। लेकिन कमरे के दूसरे छोर पर बैठा अर्जुन बेचैन था। वो कुर्सी की पीठ से टिके हुए, बाहें छाती पर बांधे पूनम की पीठ को घूरता रहा। चेहरे पर गुस्से और हैरानी का अजीब सा मिश्रण था। धीरे धीरे उसके होंठ हिले, शब्द फिसले। ये पहले कभी ऐसी नहीं थी। पूनम तो मेरी हर बात मान लेती थी। कितनी शांत, कितनी भोली थी। और आज देखो, जैसे तलवार बन गई है। जवाब पर जवाब, नजरों में भी तंस। ये सब अचानक कैसे? उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। जरूर उस आदमी की वजह से। हाँ, वही। उसी के साथ रहकर इसका दिमाग पूरी तरह बदल गया है। उसी ने इसे मेरे खिलाफ भड़का दिया। वरना पूनम, वो तो ऐसी थी ही नहीं। वो कभी भी मुझसे बहस नहीं करती थी। मेरी हर आदत, हर खामोशी तक समझ लेती थी। अर्जुन के हाथों की मुट्ठियां कस गईं। वो उठकर खिड़की की तरफ चला गया। बाहर अंधेरे में झींगुरों की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन उसके कानों में सिर्फ अपनी ही सोच की गूंज थी। ये अबीर, यही नाम है ना उसका? हाँ, देख लिया। इस आदमी ने धीरे धीरे सब बदल दिया। पूनम की मासूमियत, उसकी सहजता, सब छीन लिया। उसे सिखा दिया कि कैसे हर वाक्य को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। यही काम किया है उसने। और अब पूनम मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। वो हंसा, मगर उस हंसी में पीड़ा थी। हद है, वो लड़की जो कभी आंखें झुका लेती थी, आज कह रही है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं हूं या नहीं। क्या सच में फ़र्क नहीं पड़ता पूनम, या ये बातें भी उसी आदमी की बोई हुई सोच हैं? वो खिड़की पर हाथ टिकाकर बाहर देखने लगा। उसके चेहरे पर परछाइयां खेल रही थीं। मैं उसे ज्यादा जानता नहीं, बस इतना देखा कि उसकी मौजूदगी के बाद पूनम का हर रंग बदल गया। न जाने कैसे बातें करता होगा उससे, कैसे कैसे ख्याल डाले होंगे उसके मन में। तभी तो वो कह रही थी कि उसे अब चुप रहने की ज़रूरत नहीं। अरे, ये ज़रूरत कब से बदल गई? मैंने तो हमेशा उसे अपने हिस्से की जगह दी थी, लेकिन अब लगता है उसके कान किसी और की आवाज़ में लग गए हैं। अर्जुन धीरे धीरे बुदबुदाता हुआ कमरे में टहलने लगा। वो अबीर एक ही नाम कानों में गूंजते हैं, लेकिन खासकर ये अबीर, हाँ, उसी का असर है। उसी ने पूनम को सिखाया कि अर्जुन से बहस करो, उसकी हर बात को काटो, उसकी हर आदत पर सवाल उठाओ। नहीं तो ये पूनम कभी ऐसी नहीं थी, कभी नहीं। वो अचानक ठिठक गया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। कभी तो वो इतनी नरम थी कि मेरी आधी बात भी पूरी कर देती थी, लेकिन अब तो हर शब्द तलवार सा लगता है। और ये सब उसी आदमी की वजह से। हाँ, वही है जिसने मेरी जिंदगी से पूनम को छीन लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने खुद से कहा, मुझे ये मंजूर नहीं। कोई भी मुझे गलत ठहरा दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूनम मुझे भूल रही है, मेरी आदतों को, मेरी बातों को, और वो सब सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और ने उसकी दुनिया में दखल दिया। हाँ, वही है असली कसूरवार। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और सिर झुका लिया। मगर मैं कैसे साबित करूं? मैं कैसे दिखाऊं कि असलियत क्या है? पूनम तो सुनना ही नहीं चाहती। उसके लिए अब मैं गुनहगार हूं, और वो आदमी मसीहा। उसकी आवाज़ भर्रा गई। ये खेल उसने खेला है, और पूनम फंस गई है पूरी तरह। कुर्सी पर रखी फाइल पर उसकी नज़र गई। उसने पास जाकर फाइल उठाई, मगर फिर झटका देकर वापस पटक दी। काम करने का कोई मतलब नहीं। दिमाग में सिर्फ वही है, वही अबीर, वही जहर। पूनम मुझे देखती है तो अब उसी की परछाई से भरी आंखें दिखती हैं। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे बिस्तर की ओर देखा। पूनम अब भी करवट लेकर लेटी थी। उसका चेहरा चांदनी से आधा ढका था। वो सचमुच सो रही थी या नाटक, अर्जुन ये समझ नहीं पाया, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्के स्वर में बुदबुदाया, तुम बदल गई हो पूनम, और इस बदलाव के पीछे वही है, वही जिसने हमारे बीच की हर बात, हर रिश्ता तोड़ दिया। उसने तकिए पर पड़े उसके हाथ को पल भर देखा, जैसे छूना चाहता हो, मगर अगले ही पल उसने नजरें फेर ली। छोड़ो, अब कुछ भी कहना बेकार है। अर्जुन ने लंबी सांस खींची। आज नहीं, किसी दिन मैं जान ही लूंगा कि इस सब की जड़ कहाँ है, और तब शायद पूनम को भी सच्चाई का अंदाजा हो। उसने धीरे से अपनी कोट कुर्सी से उठाई, कंधे पर डाली और दरवाजे की ओर बढ़ गया। कमरे में खामोशी थी। सिर्फ दरवाजे की चरमराहट हुई और फिर अर्जुन बाहर निकल गया। पीछे रह गई चांदनी, पूनम की करवट और कमरे की वही टिक टिक करती घड़ी।